Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hare Om. Hare पवित्रायद्वाणी प्रविशति विचित्रा हृदयदा तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकार घटिता स्मरामि प्रातस्तं नयन रमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 नारायण
तैत्तिरीय उपनिषद के दो मंगलाचरण हैं, एक तो शिक्षावल्ली में शन्नो मित्रा वाला जो है उसका पाठ हो ही चुका, और ब्रह्मानंद वल्ली में सहनावतु सहनव गुणतु इसका भी पाठ हो चुका। तो हम लोग तो ब्रह्मानंद वल्ली प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए शांति पाठ हो तो चुका है, एक बार मैं फिर बोल देता हूं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण, परसों ये बात हुई थी कि जीव का जो जीवन का लक्ष्य है वो परमानंद की प्राप्ति है, उसी को ब्रह्मानंद बोलते हैं। ब्रह्मानंद को शब्दों में बांधें तो जो देश से काल से वस्तु से कट न सके और जो प्रतीत होता हुआ हो, माने ज्ञान स्वरूप भी हो और अपना स्वरूप भी हो। अपना स्वरूप नहीं होगा तो कभी न कभी कट जाएगा, और ज्ञान स्वरूप नहीं होगा तो सुषुप्ति मूर्छा की तरह से पड़े रहेंगे। तो हमें पता भी चलता रहे कि हम आनंद में हैं और हम ही हैं, इसलिए किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं है। और ये देश से नहीं कटता, माने जगह परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो जहां है वहीं इसको प्राप्त कर सकता है, और काल से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर समय आप इसका अनुभव रूप प्राप्त कर सकते हैं, और वस्तु से भी नहीं कट सकता, हमारे पास ये है और ये नहीं है, नहीं है तो दुखी हो गए और है तो सुखी हो गए, ऐसा भी इसमें विभाग नहीं है। है तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं है तो भी ठीक ही है, पहले नहीं था अब है हो गया, अब आगे फिर नहीं हो जाएगा। ये तो शरीर का भी तो यही हाल है ना, पहले नहीं था अब है, आगे नहीं रहेगा। तो नारायण, जो चीज पहले थी अब है आगे नहीं रहेगी, वो तो अनात्मा है, अपना स्वरूप नहीं है, और जो हम थे सोई अब हैं और वही हम आगे रहेंगे, और हम आनंद स्वरूप ही हैं, इसलिए भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। इसी को ब्रह्मानंद बोलते हैं। ब्रह्मानंद माने जिससे बड़ा और कोई आनंद ना हो, और छोटे से छोटे की भी सीमा वही है। आनंद कमती बढ़ती नहीं होता है, आनंद के साधन कमती बढ़ती होते हैं। अब नारायण, आप गन्ना चूसो तो मिठास है, गुड़ खाओ मिठास है, चीनी खाओ मिठास है, मिठाई खाओ मिठास है, और इमरती खाओ मिठास है, और कोई रिफाइनमेंट होता हो इसका तो वो भी मिठास ही है। है सब गन्ना ही, अगर मीठा ये मालूम पड़ गया कि मीठा ये होता है, तो फिर जिस किसी चीज में भी वो मीठा मालूम पड़े वो मीठा ही है। उसके छिलके के भाग को छोड़ते जाओ, जो रॉ मटेरियल है उसको हटाते जाओ। अब इस शरीर में रॉ मटेरियल क्या है, हड्डी है, मांस है, नदी है, नाले हैं, ये सब रॉ मटेरियल, इसको हटा दो क्या बचता है। तो कभी एकांत में बैठ के सोचना तो चाहिए ना कि क्या बचता है। तो जवाब प्रायः 99% लोगों का यही आएगा कि कुछ नहीं बचता है, लेकिन वो 1% वाले की भी तो बात सुनो। उपनिषद कहती हैं और महात्मा लोग कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जो बचता है वो कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ होता है। तो 1 मिनट 2 मिनट उसमें भी कुछ अपना लगाना चाहिए। अगर 1 मिनट छोड़, 1 सेकंड भी अगर आपने वो क्षण पकड़ लिया जिसमें कुछ नहीं बचता है, तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे सूर्य लगता तो है बहुत छोटा, लेकिन धरती से तो हजारों गुना बड़ा है, और उसमें प्रकाश और दाहकता करोड़ों गुना है, दिखाई छोटा पड़ता है। तो ये आत्मा भी छोटा सा मालूम पड़ता है शरीर की वजह से। असल में ये छोटा नहीं है, छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। अणोरणीयान महतो महीयान। हम तो जब क्लास में गणित पढ़ाते थे ना तो इन्फिनिटी पढ़ाना तो पड़ता ही है। तो अब इन्फिनिटी माने क्या, तो एक प्लस इन्फिनिटी होता है, एक माइनस इन्फिनिटी होता है। तो वेदांत के टर्म्स में बोल देते थे ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तब स्मॉलेस्ट जब आ गया तो उससे और छोटा क्या होगा, और जब ग्रेटेस्ट आ गया तो उससे और बड़ा क्या होगा। ये तो सुपरलेटिव ही हो गई ना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। लेकिन माने कंपैरिजन, तुलना की जरूरत ही नहीं है अभिप्राय कहने का। ये तो अनंत उसको कहते हैं कि जो अणोरणीयान और महतो महीयान है, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वो वृहद होता है, बड़ा। तो कितना बड़ा, तो वो इनफाइनाइट, अनंत। असल में उसका आनंद यदि प्राप्त हो जाए, बड़े से बड़ा और जो छोटे से छोटा है, तो कहते हैं कि ब्रह्मानंद मिल गया। वो महाराज से सुनाते थे, उड़िया बाबा जी के एक शिष्य थे पलटू बाबा, तो जिस दिन भंडारे में खीर बनती थी तो वो कहते थे आज तो महाराज ब्रह्मानंद आ गया। तब किसी का ब्रह्मानंद खीर में है नारायण, किसी का पूड़ी में है, और किसी का और मिठाई में है, किसी का किसी में है, किसी का किसी में है। लेकिन ये ब्रह्मानंद नहीं है। जब उपाधि निर्मूल्य हो जाए, निर्मूल्य माने डिवैल्यूएशन जैसा होता है ना, रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया तो उसका मूल्य कम हो गया, तो किसी के मुकाबले में कम हो गया, तो जैसे डिवैल्यूएशन होता है ऐसे ही उपाधि जब वैल्यूलेस हो जाए, डिवैल्यूएशन नहीं वैल्यूलेस हो जाए। अरे घड़े का मिट्टी में क्या वैल्यू है, मिट्टी की वैल्यू है या घड़े की वैल्यू है? तो बोले भाई यूटिलिटी वैल्यू तो घड़े की है। सर चलो दूसरा उदाहरण ले लो, सोने की वैल्यू है कि आभूषण की वैल्यू है? तो पहनने वाला जो है वो तो कहेगा कि आभूषण की वैल्यू है, और जो खर्च करेगा वो चाहे पति करे चाहे पत्नी करे वो कहेगा भैया इसमें सोना कितना है। सराफ की दृष्टि में सोने की वैल्यू है, पहनने वाले की दृष्टि में आभूषण की वैल्यू। तो आज यूटिलिटेरियन दृष्टिकोण ज्यादा हो गया है, उपयोगितावाद हो गई है, इसलिए वो उपाधि जो है वो निर्मूल्य कभी होती नहीं है। जब विचार करते हैं तो उस अनंत आकाश में एक छोटे से मिट्टी के घड़े की क्या वैल्यू है? धरती की कोई वैल्यू नहीं है अनंत आकाश में, तो उस धरती के एक अंश से बना हुआ घड़ा उसकी क्या वैल्यू है? परंतु आकाश में कुछ वैल्यू नहीं है। पानी भरना चाहो तो वो तो छोटे से घड़े से ही काम चलेगा ना। तो उपयोगितावाद को छोड़ करके तब वो उपाधि जो है वैल्यूलेस हो जाती है। फिर किसी भी उपाधि में आनंद आओ, आनंद ही आनंद है, उसी को ब्रह्मानंद बोलते हैं। ये पंचदशी में जो अंतिम पांच चैप्टर्स हैं उसमें योगानंद भी ब्रह्मानंद है, अद्वैतानंद भी ब्रह्मानंद है, विद्यानंद भी ब्रह्मानंद है, विषयानंद भी ब्रह्मानंद है। माने संसार में जितने आनंद भोगे जाते हैं वो सब ब्रह्मानंद ही हैं। तो विद्यानंद स्वामी से लोग नाराज हो गए कि आपने क्या कह दिया कि विषयानंद भी ब्रह्मानंद है, विषयानंद में तो सब पहले से ही डूब रहे हैं, अब आप कहोगे तो और विषयानंद ही पकड़ेंगे, ब्रह्मानंद तो कोई पकड़ेगा नहीं नारायण। तो फिर उन्हें 16वां चैप्टर लिखना पड़ा, जीवन मुक्ति विवेक। वो अलग पुस्तक बन गई जीवन मुक्ति विवेक। उसमें उन्होंने बताया कि नहीं भाई, विषयानंद ब्रह्मानंद तभी है जब विषय का मूल्य न रहे। जब तक विषय का मूल्य है तब तक तो वो विषयानंद ही है। तो ऐसा ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है तो अब ब्रह्म तो आ ही गया इसमें, अब ब्रह्म का और ब्रह्म के आनंद का आपस में क्या संबंध है? ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की सत्ता। महाराष्ट्र कहते हैं कि न तो ब्रह्म मिथ्या है और न सत्ता मिथ्या है, न तो ब्रह्म मिथ्या है और न उसका ज्ञान मिथ्या है, न तो ब्रह्म मिथ्या है न उसका आनंद मिथ्या है, तो मिथ्या क्या है? तो बोले ये जो का लगा के बोलते हो ना, ये का मिथ्या है, संबंध विभक्ति जो है वो मिथ्या है। ब्रह्म ही आनंद है, ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म ही सत्ता स्वरूप है। जहां जहां आपको सत्ता मालूम पड़ती है, सत्ता माने होना पना, फूल है, पुस्तक है, माइक है, कुर्सी है, टेबल है, औरत है, मर्द है, लाइट है, सब में है 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 है, सबकी सत्ता मालूम पड़ रही है ना। तो ये सत्ता मालूम पड़ रही है, ये सत्ता किसकी है, हैपना किसके कारण है? तो इसका जो उपादान कारण है लोहा, मान लो लोहे का बना हुआ है, तो लोहे के कारण सत्ता मालूम पड़ रही है। लेकिन लोहे की सत्ता किससे मालूम पड़ रही है? बोले वो पृथ्वी तत्व से मालूम पड़ रही है। पृथ्वी तत्व की सत्ता किससे मालूम पड़ रही है? तो वो जल तत्व से मालूम पड़ रही है। ऐसे ही उसके कारण की खोज करते चले जाओ तो अंत में ब्रह्म सत्ता ही इस माइक की सत्ता के रूप में हमको दिखलाई पड़ रही है। तो जहां तक सत्ता है, अच्छा मैं हूं तो शरीर हूं, प्राण हूं, इंद्रियां हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, जीव हूं, नारायण आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, सब में तो हूं लगा हुआ है। ये जो सत्तापना मालूम पड़ रहा है, इस सत्ता में और बाहर की चीजों में हैपना मालूम पड़ रहा है, तो हूं पने में और है पने में क्या अंतर है नारायण? जो हूं है सोई है, है क्योंकि उसमें वस्तु तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ सत्ता मात्र है पना, एग्जिस्टेंस ओनली। भाष्यकार ने लिखा सत इति सत अस्तित्व मात्रम। सत किसको बोलते हैं? कि जो अस्तित्व मात्र है। ये तो सत्ता की दृष्टि से हुई। और ज्ञान की दृष्टि से बोलेंगे तो क्या होगा? ज्ञान किसे कहते हैं? कि ज्ञान इति ज्ञान मात्रम। मात्रम माने ज्ञाता नहीं, मात्र माने सिर्फ, ओनली ओनली ज्ञान। ज्ञाता नहीं, ज्ञे नहीं, ज्ञान का कारण नहीं, ज्ञान की कोई वृत्ति नहीं, वृत्ति का विषय नहीं, वृत्ति का अभिमानी नहीं, और ज्ञान है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान मात्रम। इसी प्रकार से आनंद का विषय नहीं, आनंद का भोक्ता नहीं, भोगने के कारण नहीं, और आनंद है। नहीं का मतलब ये नहीं है कि है नहीं, उनकी भी तो अपनी अपनी जगह पर कोई ना कोई सत्ता है। अरे बोले अगर अंतकरण ही नहीं रहेगा तो आनंद का भोग कौन करेगा? भोग तो अंतकरण से ही होगा। लेकिन अंतःकरण के द्वारा जो भोग्य है वो तो द्वार हुआ ना, भोगा किसको? आनंद को कि अंतःकरण को? तो अंतःकरण में किसने भोगा? अंतःकरण ने या मैंने जो अंतःकरण को अपना मानता हूं? तो मैंने भोगा और अंतःकरण के द्वारा भोगा और आनंद को भोगा, सुख को भोगा। तो यही आनंद के तीन विभाग हो गए, भोक्ता भोग भोग्य। तो भोक्ता भोग भोग्य से रहित आनंद, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय से रहित ज्ञान, और कर्ता करण कर्म से रहित सत्ता, जो शेष वस्तु है नारायण, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म इसलिए बोलते हैं कि सर्वत्र है, उससे बड़ी भी कोई चीज नहीं है, उससे छोटी भी चीज कोई नहीं है। छोटी बड़ी सब चीजें जो हैं उसी के द्वारा मालूम पड़ती हैं, उसी में मालूम पड़ती हैं, उसी के द्वारा उनकी उपयोगिता है। स्वप्न में आपको घड़ा मालूम पड़ता है तो घड़े की सत्ता है क्या? तो स्वप्न के देखने वाले से अलग घड़े की कोई सत्ता नहीं है। ऐसे ही घड़े का ज्ञान भी हो रहा है तो वो घड़े का ज्ञान सपने का वो भी स्वप्न देखने वाले से अलग कुछ नहीं है, और उसमें जो सुख हो रहा है वो भी स्वप्न देखने वाले से पृथक कुछ नहीं है। तो आत्मा से पृथक न सत्ता है, न ज्ञान है, न आनंद है। इसलिए आत्मा जो है वो बृहद है, ब्रह्म है। अब सवाल ये हुआ कि इस ब्रह्म को का ज्ञान या ब्रह्म को प्राप्त कैसे किया जाए, ब्रह्मानंद को कैसे प्राप्त किया। यहीं से ये ब्रह्मानंद वल्ली प्रारंभ होती है। इसकी प्रथम श्रुति ये है, ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्मविद आपनोति परम, वो जो परमानंद है, ब्रह्मानंद है, वो किसको प्राप्त होता है कि ब्रह्मविद को प्राप्त होता है। ब्रह्मविद उस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म को जानना और ब्रह्म का आनंद रूप अनुभव करना ये दोनों एक ही बात हैं। वरना ऐसे लिखते कि ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्म का भोग करता है, या तो कह रहे हैं ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मानंद का भोग नहीं होता है, ब्रह्मानंद का स्वरूप से ज्ञान जो है यही उसका भोग कहा जाता है। अब देखो, मान लो मैं फूल इस पीले रंग का भोग करना चाहूं तो बाहर प्रकाश भी चाहिए, फूल तो चाहिए ही, बाहर प्रकाश भी चाहिए, नेत्र भी चाहिए, नेत्र के पीछे चेतन भी चाहिए, चिदाभास जिसको बोलते हैं नारायण, और पूर्व ज्ञान भी चाहिए। अगर बच्चे को ये ज्ञान ना कराया जाए कि ये रंग पीला है तो आप चाहे जितना उसके सामने पीला रंग रखो वो पीला शब्द नहीं बोल सकता, यही पूछता रहेगा कैसा है कैसा है कैसा है, और एक दफे ज्ञान हो गया तो फट से कह देगा कि पीला है। तो पूर्व ज्ञान भी चाहिए। तो संसार की जितनी परिच्छिन्न वस्तुएं हैं उन सब में इतनी चीजें होती हैं तब जो है उसका ज्ञान होता है। अद्भुत माने फूल, अधिदैव माने प्रकाश, अध्यात्म माने नेत्र, और जानने वाला इनका चिदाभास, और पूर्व ज्ञान, इतनी चीजें चाहिए तब जाके इसके पीलेपन का ज्ञान होगा, इसके पीलेपन का भोग होगा। लेकिन अगर चिदाभास आत्मा को ही अपना स्वरूप जानना हो तो न तो उसमें आंख की जरूरत है, न उसमें बाहर के प्रकाश की जरूरत है, और न उसमें किसी फूल आदि उपाधि की जरूरत है, वो तो बिना उसके ही जाना चला जाएगा। तो बोले नहीं, तो वृत्ति तो जाती है अन्य में, तो बस यही अभ्यास करना है। पकड़ने का तरीका यही है कि जो अन्य में बुद्धि जाती है उस अन्य बुद्धि का निषेध करना है। तो ब्रह्म का वेत्ता, ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म को जानना और ब्रह्म को प्राप्त करना और ब्रह्मानंद को प्राप्त करना और ब्रह्म की सत्ता का अनुभव करना एक ही चीज है। जानने में ही सब कुछ है। अगर परिच्छिन्न हो तो पीले का ज्ञान होगा, लाल का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जो सबका मूल है, यदि उसका ज्ञान हो जाए तो उसमें पीला भी है, उसमें लाल भी है। महाराज जी सुनाते थे कि एक त्रिवेणीपुरी जी महाराज थे पंजाब में, तो उनके पास गए तो इलायची कुछ न कुछ महात्मा के पास ले जाते हैं, तो इलायची की पुड़िया जो है उनके पास रख दी हमने। तो हमने जानबूझ के उनसे कहा, महाराज जी ये क्या है? तो त्रिवेणीपुरी जी बोले ब्रह्म है। अब देखो ये भी कह सकते थे कि इलायची है, इसमें कोई उनके ज्ञान की हेटी थोड़ी है, लेकिन एक तो जिज्ञासु हो सामने और एक अपनी निष्ठा हो तो वही बात निकलेगी जो जिज्ञासु के हित की है। संसारी आदमी पूछे कोई कि महाराज जी ये क्या है, तो बोले इलायची है, और जिज्ञासु पूछे कि ये क्या है, बोले ब्रह्म है। कि तुम कौन हो कि आदमी हो, ये तो हमको भी दिख रहा है कि आदमी है, फिर आपसे पूछते क्यों है? तो बोले ब्रह्म है। ये शरीर दिखता है, अब इसमें ये पूछो ये क्या है, अरे शरीर है और क्या है। लेकिन आप किसी महात्मा से पूछोगे कि मैं क्या हूं, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि तुम शरीर हो, शरीर तो सबको ही दिख रहा है। ज्ञान जो होता है वो अज्ञात की निवृत्त करने के लिए होता है, जो चीज हमको मालूम नहीं है उसके लिए ज्ञान कराया जाता है, और जो पहले से ही मालूम है उसमें क्या ज्ञान कराएंगे। तो तुमको ये मालूम नहीं है कि तुम ब्रह्म हो, तो इसलिए महात्मा से अगर पूछे कोई कि महाराज जी मैं कौन हूं, तो पहले सीधा छूटते यही बोलेगा कि तुम ब्रह्म हो नारायण। फिर वो पूछे कि मैं कैसे ब्रह्म हूं, मैं तो अपने को ब्रह्म अनुभव नहीं करता हूं, तब फिर कोई न कोई प्रक्रिया वो बताएगा समझाने की, तो सत्संग चालू हो जाता है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम। अब इसमें पूर्व पक्ष ये है कि ये जानना क्रियारूप है या केवल ज्ञान है। जैसे मान लो मैं इस फूल को देखना चाहता हूं, मेरी आंख बंद है, आप अपनी आंख थोड़ी देर को बंद कर लो एक सेकंड के लिए और फिर इस फूल को देखो, दिख गया ना? खोलोगे आंख तो तुरंत दिख गया ना? ये तो आपने कौन सी क्रिया की? ज्ञान में कोई क्रिया करता नहीं है। जहां प्रमाण होता है रूप को देखने में, आंख ही प्रमाण है। प्रमाण कहते हैं यथार्थ ज्ञान का करण, जिससे ठीक ठीक ज्ञान हो जाए उसको प्रमाण बोलते हैं। तो प्रमाण से जो ज्ञान होता है उसमें कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है, वो तो जहां प्रमेय हुआ, सामने आई वस्तु और प्रमाण के साथ उसका संयोग हुआ, सो ही ज्ञान हो जाता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब आत्मा ही को जानना हो, ब्रह्म को ही जानना हो, तो बाहर की चीजों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अधिभूत हो के ना हो, अधिदेव हो के ना हो, अध्यात्म हो के ना हो, नारायण वो तो वस्तु का ज्ञान तो हो ही जाएगा। तो पूर्व पक्षी ये कहता है कि ये जो ब्रह्मवित है इसमें वेदन क्रिया है, जानने की क्रिया है। जैसे आंख से भी हम जानते हैं, प्रमाण से भी, तो कोई ना कोई तो क्रिया होती ही है, ऐसा उसका मतलब है। तो भाष्यकार कहते हैं कि नहीं भाई, अगर वो क्रिया का फल हो, ब्रह्म यदि किसी क्रिया का फल होगा तो ब्रह्म अविनाशी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो क्रिया से उत्पन्न होता है वो पहले नहीं होता है, क्रिया के कारण उसकी उत्पत्ति होती है, जिसकी उत्पत्ति होती है वो फिर नष्ट भी हो जाती है। कितना भी मजबूत मकान बनाओ नारायण, 500 बरस में, 1000 बरस में, 2000 बरस में, कभी न कभी तो अपने आप ही गिर जाएगा, आप कुछ भी मत करो, और भूचाल आ जाए तो अभी गिर जाए। तो बाह्य हेतु से तो कोई भी क्रिया कभी भी हो सकती है। तो कहते हैं कि अगर विधि क्रिया को हम ये माने कि जानने की भी एक क्रिया होती है, तो ब्रह्म ज्ञान भी फिर क्रिया का फल मानना पड़ेगा, और क्रिया का फल मानना पड़ेगा तो ब्रह्म अविनाशी नहीं रहेगा। तो ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करके क्या करेंगे? तो श्रुति क्यों आपको झंझट में डालेगी? ब्रह्म वेद आप नोति परम, वो आपको कोई ठगना तो चाहती नहीं है, आपको यथार्थ बात बताना चाहती है। तो बोले फिर क्या होता है कि प्रमाण से ज्ञात होता है। ये अपनी तरफ से तो मैं सरल शब्दों का ही प्रयोग कर रहा हूं,